अगली कहानी पे चलते हैं। पेज 128, सच्चाई की तलाश। एक सहाबी के मुसलमान होने का किस्सा। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सच की तलब लगा दे और इसकी तलाश करें। सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हो, नाम सुना वा? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ईमान लाने का किस्सा खुद सुनाते हैं, आइए सुनिए वो कहते हैं। अच्छा, आप जहाँ भी इनके मुसलमान होने का किस्सा लफ्ज़ आएगा ना, तो आप इसको अपने बामल मुसलमान होने, शौरी मुसलमान होने से रिलेट करिएगा, तो आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इन्हीं की ज़ुबान से कहानी। कहते हैं कि मैं इस्फहान में अपने वालिद के साथ रहता था। फारस में थे ना, फारसी नस्ल थी इनकी। कहते हैं मेरे वालिद बस्ती के तजुर्बेकार ज़मींदार और चौधरी थे। उन्होंने मुझे मजूसियत में इस कदर पक्का कर दिया था। मजूसियत क्या? फायर वर्शिपर। इस कदर पक्का कर दिया था कि मजूसियों के आतिश कदे में आग जलाने की जिम्मेदारी भी मुझ ही को सौंप दी गई। ये उनके लिए एक बड़ा मजहबी फरीजा था। रोज़ सुबह उठ के आग जलाते थे और जो वो जलाए वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। चुनाचे मैं मजूसियों के लिए आग सुलगाया करता था और आग मुसलसल जलती रहती, यानी बुझने नहीं देनी होती। अगर बुझ गई तो गोया कि उनका खुदा फौत हो गया। लम्हा भर के लिए भी नहीं बुझ पाती थी। एक रोज़ मेरे वालिद ने मुझे अपनी जागीर की रखवाली के लिए भेजा और कहा, अपनी जिम्मेदारी ध्यान से अदा करना और जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाता हूँ। मैं जागीर की तरफ जाने के लिए घर से निकला। मेरा गुजर ईसाइयों के गिरजा घर के पास से हुआ। वहाँ लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो अपनी इबादत में मशगूल थे। मैंने इन लोगों को देखा तो देखता ही रह गया, हत्ता कि पूरा दिन बीत गया। इनकी इबादत मुझे अच्छी लगी और इसमें कशिश महसूस हुई। मैंने दिल ही दिल में कहा, हाज़ा वल्लाहि खैरु मिन अद्दीन अल्लज़ी नहनु अलैह। अल्लाह की कसम, ये दीन हमारे दीन के मुकाबले में बहुत अच्छा है। यानी ये तो सिर्फ आग की पूजा करते थे, यहाँ ज़रा कुछ डिफरेंट स्टाइल था। मैंने इन ईसाइयों से पूछा, मैं तुम्हारे दीन की तालीम कहाँ पा सकता हूँ? उन्होंने बताया, मुल्क शाम में। मैं जब शाम के वक्त अपने वालिद के पास पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ थे। मैंने इन्हें पूरी दास्तान कह सुनाई। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनने के बाद मुझे लोहे की जंजीर से बांध दिया। इन्हें ये खौफ दामनगीर हो गया, यानी इनको फिक्र लगी कि कहीं मैं दीने मजूस से मुर्तद ना हो जाऊँ। यहाँ नोट करें कि हर बंदा अपने दीन पे पक्का होता है और उसको वही अच्छा लग रहा होता है। मैंने इस मामले की इत्तला ईसाइयों को भेज दी और ये भी कहलवाया कि जब तुम्हारे पास मुल्क शाम से कोई काफिला आए तो मुझे आगाह कर देना। काफिला आया तो उन्होंने मुझे खबर दी। काफिले की वापसी का वक्त आ पहुंचा तो मैं किसी न किसी तरह लोहे की जंजीरों की गिरफ्त से निकल भागा और काफिले में शामिल हो गया। मुल्क शाम पहुंचा तो मैंने वहां के बाशिंदों से पूछा, इस दीने मसीही का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने मुझे गिरजा घर के बिशप का पता बताया। बिशप बड़ा पादरी होता है जिसका दर्जा कसीस से ऊपर और मित्रान से नीचे होता है। कुरान में आता है ना, मिनहुम क़िस्सीसीना, तो क़िस्सीस वही है जैसे प्रीस्ट कह लीजिए आप। मैं इस पादरी के पास पहुंचा और कहा, मुझे आप लोगों का दीन पसंद है। मेरी तमन्ना है कि मैं आपके पास रहूं, मैं आपके साथ रहूं, गिरजा घर के अंदर आपकी खिदमत का शर्फ हासिल करूं, आपके इल्म व फैज़ से मुस्तफीद हूं और आपके साथ इबादत किया करूं। पादरी ने कहा, मेरी सोहबत इख्तियार कर लो, कोई हरज नहीं। मैं इस पादरी के पास रहने लगा। जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि वो पादरी बड़ा मतलब परस्त और बड़ा बुरा आदमी है। इसको नोट करें, साथ रहने वाले को पता चलता है बंदा क्या है, दूर रहने वालों को तो सभी अच्छे लगते हैं। वो लोगों को सदका और खैरात का हुक्म देता, सदके की खूब तरगीब दिलाता और जब लोग इसकी खिदमत में सदका और खैरात का माल इकट्ठा कर देते तो वो सारा माल खुद हड़प कर लेता, मिस्कीनों और फकीरों को इसमें से कुछ भी ना देता। इसने लोगों के सदकात और खैरात से अपने लिए 7 सुराहियों में सोना चांदी इकट्ठा कर रखा था। पहले दौर में लोग बर्तनों में डालकर छुपा देते थे, तो इसी तरह उसने भी किया हुआ था। मैं इसकी ख़यानत और ज़र परस्ती यानी माल की मोहब्बत देखकर इससे बड़ा नाला रहा करता और इसे सख्त नफ़रत की निगाह से देखता था। क़ज़ा व कदर ने ख़ुद ही फ़ैसला कर दिया, वो कुछ दिनों के बाद मर गया। जब इसके कफन दफन के लिए ईसाई लोग इकट्ठे हुए तो मैंने इन्हें असल हकीकत बताई कि ये लाट पादरी अच्छा आदमी नहीं था जैसा कि तुम लोगों का ख्याल है, बल्कि ये तो नहायत घटिया इंसान था। ये तुम लोगों को सदका व खैरात का हुक्म देता था और इस पर तुम्हें उभारता रहता था, और जब तुम लोग इसकी खिदमत में माल इकट्ठा कर देते थे तो वो सारा माल अपने लिए ज़खीरा कर लेता था और इसमें फ़ुकरा और मसाकीन को कुछ नहीं देता था। ईसाइयों ने मेरी बात सुनी तो बड़े हैरान हुए। कहने लगे, इस इल्ज़ाम का सबूत क्या है? मैंने इन्हें साथ लिया और पादरी का ख़जाना दिखलाया। उन्होंने सोने और चांदी से भरी हुई 7 सुराहियाँ देखी तो गज़बनाक हो गए और कहने लगे, हम इस बेईमान को हरगिज़ दफन नहीं करेंगे। चुनाचे उन्होंने इस पादरी को सूली पर लटका दिया और इसकी लाश पर नफ़रत से पत्थर बरसाए, फिर इसकी जगह दूसरे शख्स को पादरी बना दिया। अब आप देखिए कि इससे क्या पता चलता है कि सच छुपता नहीं है। अपनी ज़िंदगी में इसको लोग बिशप बिशप कहते होंगे, लेकिन बाद में पत्थर मारे। तो कभी भी कोई गलत काम करे और ऐसी ख़यानतें जो इज्तमाही ख़यानतें हों, इसके वक्त इंसान डरे कि मेरे बाद कहीं मेरा जिक्र बुरे मानों में ना होने लगे। खैर, अब एक और शख्स पादरी आ गया। मैंने इस नए पादरी को बहुत अच्छा पाया। ये दुनिया से बेनियाज, आखरत का तलबगार और दिन रात की घड़ियों में हर आन नेकी का ख्याल रखने वाला शख्स था। इसके हुस्न किरदार की वजह से मैं इससे बहुत मोहब्बत करने लगा और मुद्दत तक इसके साथ रहा। जब इसकी वफ़ात का वक्त आया तो मैंने दरख्वास्त की, मैं आपकी खिदमत में एक अरसे से हूँ, आपसे मुझे शदीद मोहब्बत है, लेकिन आपको अल्लाह का बुलावा आ चुका है, अब आप मुझे किसकी खिदमत में हाजिर होने की नसीहत फरमाते हैं और मेरी भलाई के लिए क्या हुक्म देते हैं? अब यहाँ देखिए इसकी सच्चाई। पादरी ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, अल्लाह की कसम, लोगों ने तबाही का रास्ता इख्तियार कर लिया है और असल दीन को बदल डाला है। इस वक्त रोए ज़मीन पर मुझे किसी के बारे में इल्म नहीं जो हमारी तरह सही दीन पर हो। अलबत्ता मूसल शहर में फलां आदमी है जो हमारी तरह सही दीन पर कायम है, तुम वहाँ चले जाओ और उसी के साथ रहो। पादरी मर गया तो मैं मुसल पहुंचा और जिस आदमी के बारे में पादरी ने खबर दी थी इसके साथ हो लिया। मैंने देखा ये भी अच्छा आदमी है, मगर कुछ ही दिनों में वो भी वफात पा गया। इसके मरने का वक्त आया तो मैंने गुजारिश की, फलां पादरी ने मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने की वसीयत की थी, चुनाचे मैं हाजिर हुआ। अब आपको अल्लाह का बुलावा आ चुका है, आप मुझे किसकी खिदमत में जाने की वसीयत फरमाएंगे और मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? पादरी ने कहा, बेटा अल्लाह की कसम, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो हमारी तरह सही दीन पर कायम हो। अलबत्ता नसीबैन, जो तुर्की का एक शहर है, वहाँ एक ऐसा आदमी है, उसके पास चले जाओ। इस पादरी का इंतकाल हो गया तो मैं नसीबैन के पादरी के पास पहुँचा, अपना तारुफ कराया और जो कुछ मेरे गुज़श्ता दोनों पादरियों ने बताया था इससे आगाह किया। पादरी ने कहा, ठीक है, मेरे पास ठहर जाओ। मैं इसके पास रहने लगा। फिल वाक़े मैंने इसे पहले दोनों पादरियों ही के दीन पर पाया, लेकिन थोड़े ही दिन गुजरे थे कि इस पर भी आलम नज़ा तारी हुआ, यानी इसकी मौत का वक्त आ गया। मैंने कहा, जनाबे वाला, फलां पादरी ने मुझे मूसल के पादरी की खिदमत में हाजिर होने का मशवरा दिया था और जब इसकी वफात होने लगी तो इसने आपकी खिदमत में हाजिर होने की तरगीब दी। चुनाचे मैं आपके पास कुछ दिनों तक रहा। अब जबकि आपको भी अल्लाह ताला का बुलावा आ चुका है तो मुझे आप कहाँ जाने की वसीयत करेंगे और मुझे क्या हुक्म देंगे? पादरी ने कहा, बेटा मुझे किसी ऐसे शख्स के बारे में इल्म नहीं जो हमारी तरह सही दीन का पैरोकार हो। अलबत्ता रोम, जिसको मौजूदा तुर्की में अमूरिया का इलाका है, वहाँ एक आदमी ऐसा है, अगर चाहो तो इसी के पास चले जाओ क्योंकि वो हमारी तरह सही दीन पर कायम है। इस पादरी का भी इंतकाल हो गया। मैं अमूरिया के पादरी की खिदमत में जा पहुंचा और उसे अपनी दास्तान सुनाई। उसने कहा, ठीक है, मेरे पास ठहरो। मैं इसके पास रहने लगा। ये भी बहुत अच्छा आदमी था। कुछ दिनों के बाद इसकी वफात का भी वक्त आन पहुंचा। मैंने गुजारिश की, आप मुझे किस बात का हुक्म करते हैं और किसकी खिदमत में हाजिर होने की वसीयत करते हैं? अब यहाँ से सुनिएगा। पादरी ने जवाब दिया, बेटे अल्लाह की कसम, मेरे इल्म में कोई शख्स ऐसा नहीं जो हमारी तरह सही दीन पर कायम हो और जिसकी तरफ मैं तुम्हारी रहनुमाई कर सकूं। अलबत्ता एक नबी के मबूस होने का वक्त करीब आ गया है, वो दीन इब्राहिम के साथ भेजा जाएगा और सरजमीन अरब में जाहिर होगा। वो नबी दो हर्रों यानी मदीना के दोनों जानिब से पथरीली ज़मीन के दरमियान खजूरों वाली जगह की तरफ हिजरत फरमाएगा। इसकी चंद वाज़ह निशानियां हैं। क्या वो हदिया कबूल करेगा? सदका खैरात नहीं लेगा। इसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। हो सके तो इस मुल्क में चले जाओ। फिर वो पादरी इंतकाल कर गया और जितनी मुद्दत अल्लाह ताला ने चाहा मैं अमूरिया ही में मुकीम रहा। बिरादराने इस्लाम, गौर फरमाइए, ये किस कदर कठिन सबर आजमा, मुशक्क़त आमेज़ सफ़र है, जिसे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने सिर्फ हकीकत की तलाश के लिए तय किया। दरियाओं की मोजें, पहाड़ों की चोटियाँ और बेआबो गया सहराओं की वसअतें भी इनकी जस्तजुए सदाकत पर गालिब ना आ सकीं। सुनसान जंगलों की पुरखार झाड़ियों से गुजरते हुए उन्होंने कई खित्तों को पार किया। इस आबला पाई, आबला पाई क्या होता है, पाँव में छाले पड़ जाना चल चल के। इस आबला पाई का मकसद इसके सिवा कुछ न था कि वो दीन हक को पालें। तारीख लिखने वाले यानी हिस्टोरियन मौरखीन ने लिखा कि सलमान फारसी ने तवील उम्र पाई और तीन मजाहब, कौन से, मजूसियत, नसरानियत और इस्लाम के तजुर्बात हासिल किए। इनकी असल तलब और तड़प सिर्फ ये थी कि वो सही दीन ढूंढ लें, सिर्फ यही मकसद था जिसके लिए उन्होंने लंबे लंबे और थका देने वाले काले कोसों के सफ़र किए जिनका हाल आप पढ़ रहे थे। जितनी मुद्दत अल्लाह को मंजूर थी वो अमूरिया में ठहरे रहे। इसके बाद अपने पीर और मुर्शिद पादरी की नसीहत के मुताबिक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाशो जस्तजू में मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। जो इंदा या बिंदा, यानी जो ढूंढता है वो पा लेता है। बड़ी सऊबतें यानी मुश्किलात सहने और मुसलसल तगोदो करने के बाद आखिरकार बारगाह रिसालत में आ पहुँचे और मुसलमान हो गए। इस तरह वो एक जलीलुल कदर सहाबी बने और अल्लाह ताला के सहीफ़ा खुशनुदी में इनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इनका वाक़िया अगर आप पढ़ना चाहें तो मुस्नद अहमद 441-44 तक में भी है, सिर नबूवा इब्ने कसीर की किताब 297 में भी है और अलबिदाया और नहाया के जिल्ड 2 में 380 पेज पे भी है और सीरा इब्ने हशाम में भी ये वाक़िया मौजूद है। यहाँ ये बात इतनी हुई है ना, लेकिन अगर आप इनके वाक़यात को हदीस से देखें तो जब ये नबी सल्लम के पास पहुँचे तो इन्होंने आपको कैसे पाया, ये भी एक दिलचस्प वाक़या। क्योंकि जब ये मदीना में पहुँचे तो उस वक़्त अभी तक नबी सल्लम की वो मुखालफत चल रही थी, तो ये खुल के नहीं पूछ सकते थे कि ये कौन है या कैसे हैं। खैर, जब आपके पास पहुँचे, अब इनको जमाना था अल्लाह के नबी को कि क्या ये वाकई सच्चे नबी हैं। तो इन्होंने एक उनको खजूर पेश की। आपने पूछा कि ये सदके की है या थदिये की है, कहा कि हदिया है, तो आपने ले ली। कहा कि एक बात तो पक्की हो गई कि ये गिफ्ट ले लेते हैं। अगले दिन कुछ और पेश किया, आपने पूछा कि ये सदके की है या तोहफे की है, कहा सदके की है, तो आपने कहा कि मैं सदका नहीं खाता, वो भी छोड़ दिया। अब इनको आपके पीछे से मोहरे नबूवत देखनी थी, तो इन्होंने बड़े तरीके और बहाने से अल्लाह के नबी की कमीज़ उतरवाई और पीछे आपके शान मुबारक के बीच में जो एक नक्श था जिसको नबूवत की निशानी कहते हैं, नक्श नबूवत था, वो देख लिया, तो फिर ये मान गए। और जब आप इनका वाक़या पढ़ते हैं मुसलमान होने का, तो वाकई दिल को यकीन होता है कि सच्ची तलब और तड़प हो तो अल्लाह लेकर आता है। और अगर आप इस बुक में ये पेज पे इनका नक्शा देखिए तो इनके जो सफ़र हुए, इस्फहान से चले, मुल्क शाम पहुँचे, फिर मुसल में गए, फिर नसीबैन में गए, फिर अमूरिया में गए, फिर वादी अल-कुरा और मदीना मुनव्वरा। अगर आप इस नक्शे की रोशनी से देखें तो अच्छा खासा फासला तय किया इन्होंने। हक की तलाश में वो गए, हम कुरान की तलाश, इल्म की तलाश, दीन की तलाश में इतनी दूर जाते हैं। याद रखिए कि मुस्लिम्स का ये एक अजीब मामला है कि इल्म की तलाश में सफ़र बहुत करते थे। राहिला बोलते हैं उस सफ़र को जो इल्म की तलब में किया जाए। पूरी किताबों के अंदर इसके बाब बंधे हुए हैं कि हिस्टोरियंस ऑलवेज सरप्राइज्ड होते थे, तारीख लिखने वाले, तारीख रकम करने वाले हैरान होते थे कि ये मुसलमान इतने सफ़र कैसे कर लेते हैं। आज के दौर में, इस कल्चर में जिसमें आप और मैं ज़िंदा है, इसकी रिवायत दीन के इल्म के साथ तो बहुत थोड़ी है, बहुत कम लोग होंगे और वो भी जिनको अल्लाह करे उम्मुल कुरा में दाखला मिल गया, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, तो वो बच्चे जाएंगे और पढ़ेंगे। इसके बरक्स दुनियावी तालीम के लिए एक शहर छोड़ना तो बड़ी बात है, दूसरा मुल्क लेना भी आसान है। एक शहर में रहकर आप देखिए कि एक एक घंटा दूर, दो दो घंटे दूर भी बचे जाते। यूनिवर्सिटीज़ तो आलमोस्ट सिटी सेंटर्स में ही होती हैं, पूरे सबब्स में से लोग जाते हैं। तो आपने, मैंने इस बात को इस नज़र से सुनना और गौर करना है, क्या मैं इल्म की तलब में भी इतनी दूर जा सकती हूँ और फिर इतनी कुर्बानी है, यहाँ तो आराम से लग रहा है ना, वहां से उठे वहां चले गए वहां चले गए, प्रैक्टिकली इतना आसान तो नहीं था ना। और आपने इसमें से क्या सीखा, कोई शेयर करेगा? छुट्टा नहीं सिलसिला, यानी कंसिस्टेंसी की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। और इसमें आप ये भी देखिए कि हर दीन के अंदर कुछ अच्छे लोग थे, जब तक नबी सल्लम नहीं आए, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, जो भी इल्हामी दीन है, उनके वो लोग जो अपने दौर के मुताबिक सही थे, यानी उनमें भी हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने का नज़रिया नहीं था, या इसी तरह उज़ैर को और इब्नुल्ला नहीं कहते थे, तो वो हक पे थे, वो अल्लाह को मानते थे। लेकिन अक्सरियत इनकी क्या है, ये जो हमने वाक़या पढ़ा ना कि वो पहला प्रीस्ट जो था वो दौलत परस्त था और माल खाता था, तो सूरह तौबा में अल्लाह ने पूरी मिसाल दी, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा था ला युन्फ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो वो कल क़यामत के दिन उनके लिए कंस बनेगा, फतुकवा भी हाजिबाहुम, उनकी पेशानियों पे दागा जाएगा, दूसरी चीज़ों पे भी। फिर एक और चीज़ भी इससे पता चलती है कि इतने प्रीस्ट से गुजार कर जो इनको अल्लाह के नबी के पास पहुंचाया गया, पहला ही कह देता हाँ वो एक शख्स है मदीना वाला वहां चले जाओ, ये तो उनको भी पता था ना कि आखिरी नबी के आने का वक्त मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में आपको मुख्तलिफ जगहों से गुजारता है। कैसे गुजारता है? घड़ घड़ का पानी पिलाता है, एक्सपीरियंस तजुर्बा, आप उस काम के करने के काबिल होते हैं। आपको सलमान फारसी की और कोई बात याद है? जी, इन्हीं के मशवरे पे कह लीजिए कि इस्लाम एक दफ़ा फिर बच गया। अगर उस दिन सलमान फारसी का मशवरा ना होता या उस मशवरे पे अमल ना होता, तो इतने ट्रूप्स बन के जो आए थे मदीना, छोटी सी रियासत, उसके आगे ना टिकता। अल्लाह बाज़ दफ़ा एक बंदे को पूरे दीन के बचाव का जरिया बना लेता है। और कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, आप में से कई लोग अपनी पिछली ज़िंदगी पे गौर करके देखें, कई दफ़ा नेकियों के नाम पे, नेकियों के शौक में बहुत कुछ किया, बट बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं थी, हक नहीं था, या कोई ऐसे मामले थे कि जिसमें वो चीज़ आपको नहीं मिली तो भटकते रह गए। आज भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इसी तरह भटक रही है, तलब है, ख्वाहिश भी है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इस्तकामत नहीं है। और आप देखिए कि घर से कहाँ से निकले, बाप से छुप के, कई दफ़ा शुरू में दीन सीखने के लिए छुपना पड़ता है, ना बताओ ना छुपाओ, बहुत ज़्यादा अगर डांट पड़ती है, बहुत झगड़ा होता है, उसका जिक्र ही ना करो, टेक इट वेरी सीरियस। और इसको किस अंदाज में लीजिए कि जिसके बाद आपको महसूस होने लगे कि घर में फितना ना बने, कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, ऐसा ऐसा चीज़ें खुद बहुत सेटल हो जाती हैं।
करोगे, दीन को मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा जरूर।
यानी ये नहीं हो सकता कि सच्चे दिल से बंदा तलब करे और अल्लाह ना दे। आपको पता है किसी के पास कोई चीज़ है, आप उसके पास चले जाते हैं मांगने, मना करता? ना पता हो तो और बात है, किसी को पता भी है आपके पास चीज़ है और फिर आप ना दें, कितनी शर्म आएगी। अल्लाह की तरफ बंदा तड़प के जाए तो ये कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको ना दे। जी, तलब अंदर होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, अल्लाह ताला फिर खुद ब खुद उससे खैर मजीद बढ़ा देता है। ठीक है।